HD Smartcast. You are listening to Health Shots brought to you by HD Smartcast.
दिल से रिच दिल्ली वालों के लिए टाटा टी प्रीमियम लेकर आया है टेंशन नॉट बाय सोनल कालरा।
हाय, गला सूख रहा है, टांगे कांप रही है, हाथ में माइक है, बहुत से नर्वसनेस हो रही है, पेट में बटरफ्लाइज टाइप की अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही है। होता है ना आपको भी, जब कभी पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़े, स्टेज पे जाना पड़े, बोलना पड़े। इस फियर को ग्लॉसोफोबिया कहते हैं और कुछ स्टडीज़ तो कहती हैं कि ग्लॉसोफोबिया का जो डर है, आई मीन पब्लिक स्पीकिंग का जो डर और जो नर्वसनेस है, दैट्स ऑलमोस्ट एज मच इन पीपल एज द फियर ऑफ डाइंग। हर किसी को ये डर लगता है और बहुत सारी टेंशन दे जाता है। मेरा नाम है सोनल कालरा, इस पॉडकास्ट का नाम है टेंशन नॉट। हम हर बार एक स्ट्रेस की बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस बार पब्लिक स्पीकिंग या अगर आपको ऐसा वाला नर्वसनेस होता है जब आपको लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बोलना पड़े, तो उस डर से, उस टेंशन से बचने की कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं, तो कैसा रहेगा। मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, प्रॉबेबली यू कैन टेल फ्रॉम माय वॉइस, माय नोज इज़ ब्लॉक्ड, बट दैट इज़ द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स राइट नाउ, बिकॉज मुझे भी हमेशा माइक पकड़ते ही वही होता है जो आप सबको भी शायद होता होगा। मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, मुझे ऐसे बड़े बड़े स्पीकर्स जो कि अपने लाइवलीहुड के लिए पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, ऐसे लोग जो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, उन लोगों से बात करके भी हमेशा ये पता चला है कि एक सर्टन नर्वसनेस जो कि आपको आप चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकली स्टेज पे जाने से पहले जो होती है, वो सबको होती है। सो सबसे पहले टेंशन नॉट बात तो ये है कि whether it is top actors, whether it is heads of state, मतलब prime minister, ministers से लेके actors से लेके motivational coaches से लेके आप जितने भी ऐसे लोगों को समझ लीजिए जो जाके कुछ और लोगों के सामने बात करते हैं, उन सब के पेट में ये बटरफ्लाइज होती है। तो अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन होती है, तो फिर इसका मतलब उससे डील करना भी आसानी होता होगा, मतलब ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती होगी, और अगर होती भी होगी तो वो टेंशन कोई इतनी बड़ी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सबके साथ होता है, और अगर आप कहीं पे भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, अब देखिए ना, लाइफ में ज़रूरी तो हो ही जाता है। यू कुड बी अ स्टूडेंट और आपके ग्रुप में किसी एक को चुना जाता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। यू कुड बी अ कॉर्पोरेट पर्सन, तो उसे अपने बॉसेस के सामने कुछ प्रेजेंट करना है। यू कुड बी अ किड जिसको स्टेज पे जाके कुछ बोलना है क्योंकि मैम ने बोला कि जाके आपको कुछ रिसाइट करना है। कभी भी लाइफ में ऐसा मौका तो आएगा ही जब आपको दुनिया के सामने बोलना पड़ेगा, तो हम सबके पास ऐसा मौका आता है और हम सबको नर्वसनेस होती है और हम सब उससे अच्छे से पार कर जाते हैं। तो ये बात अपने आप में सबसे पहला टेंशन नॉट पॉइंट है। मैं आपको कुछ ऐसे तीन चार छोटे छोटे टिप्स देना चाहती हूँ जो मेरी अपनी लाइफ से मैंने देखे हैं, बिकॉज एट सम पॉइंट वेरी अर्ली ऑन इन माय चाइल्डहुड मैंने खुद ही वॉलंटियर करना शुरू कर दिया। ये मुझे अपने डर से जूझने का सबसे पहला स्टेप ये था कि जब मैम बोलती थी कि स्टेज पर जाके कौन बोलेगा ये स्पीच या स्टेज पर जाके ये पोइम को कौन रिसाइट करेगा, तो मैंने किसी एक पॉइंट पर डिसाइड किया कि मैं अपना हाथ खड़ा कर दूंगी। उससे क्या होता है कि लोग अपने आप इमेजिन करते हैं कि अरे इसको तो कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको जज करने की उनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। आप वो आप पे हंसे, आप उनसे ये पावर छीन लेते हो खुद ही वॉलंटियर करके। तो मुझे नहीं पता आप ये करना चाहते हो या आप ऐसे लोगों में से हो जो बिल्कुल अवॉइड करें टिल द लास्ट मोमेंट, टिल इट कम्स टू यू और आपको ज़बरदस्ती में करना ही पड़े, लेकिन इफ़ यू कैन वॉलंटियर देन वॉलंटियर टू बी द फर्स्ट वन टू गो आउट देयर एंड स्पीक। कई बार ये होता है कि ग्रुप्स में प्रेजेंटेशंस करनी होती हैं, तो तब भी मैं आपसे यही कहूँगी कि बेस्ट चीज़ ये है कि आप खुद अपना हाथ खड़ा कर दें कि सबसे पहले मैं जाऊँगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो नर्वसनेस है ना वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद आप आराम से बाकी लोगों की प्रेजेंटेशन को इन्जॉय कर सकेंगे। The second tension knot tip when it comes to public speaking is to rehearse. अब ये बात आप सोचेंगे कि जिन लोगों का काम ही है बोलना स्टेज पे, मान लीजिए उन लोग तो क्या ही रिहर्स करते होंगे, या मैंने ऐसा देखा है कि लोग इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के शेख चिल्ली की तरह बोलते हैं कि अरे मैं तो बिल्कुल एक्सटेम्पोर बात करता हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो अनस्क्रिप्टेड बोलता हूँ। पर एक्चुअली में ये कोई बहुत शेखी माने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड बोलते हैं, जैसे मैं भी अनस्क्रिप्टेड बोलती हूँ, लेकिन मुझे इस पर थोड़ी सी शर्मिंदगी है, कोई बहुत ज़्यादा प्राइड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सामने वाले का टाइम इम्पॉर्टेंट है। जितना वक्त आप ऑकवर्ड पॉजेस या अपनी बात को रिपीट 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 करने में, रिपीट कोई देखिए मैंने तीन बार बोल दिया, करने में आप ले रहे हैं, वो आप किसी और का कीमती टाइम ले रहे हैं। तो अगर आप रिहर्स करेंगे ना, एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रट्टा मार लें आपको क्या बोलना है स्टेज पे, लेकिन आपके अपने मन में एक अकेले कमरे में एक स्ट्रक्चर ज़रूर तैयार होना चाहिए कि आप क्या कहने वाले हैं स्टेज पे जाके या माइक पे या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में। दैट स्ट्रक्चर शुड बी रेडी इन योर हेड, बिकॉज द अदर पर्सन्स टाइम इज इम्पॉर्टेंट एंड इट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस इफ यू नो ओवरऑल वॉट इज इट दैट यू आर गोइंग टू बी सेइंग टू योर ऑडियंस इन अ लिमिटेड टाइम। सो प्लीज कहीं पे भी कुछ भी बोलना हो, आपके पास दो क्विक मिनट्स भी हो तो आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि मुझे बात क्या कहनी है। सो दैट रिहर्सल रियली विल कम वेरी वेरी हैंडी टू यू। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि किसी भी ऑडियंस में ना आपको कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा ज़रूर दिख जाता है जो इतना ही अच्छा इंसान होता है कि वो बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है और वो नॉड कर रहा होता है जब आप बात करते हैं। तो आप ऐसा एक चेहरा ढूंढ लीजिए, वो चेहरा आपके बहुत काम आएगा। आपको सारी ऑडियंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोग ऐसी टिप्स देंगे कि आप लोगों के सिर के ऊपर से देखिए या आप इमेजिन कीजिए कि आप खाली रूम में बोल रहे हैं। वो सब भी करने से मुझे लगता है कि मुझे तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस दे दे तो नर्वसनेस बढ़ जाएगी शायद, लेकिन कोई एक चेहरा किसी अच्छे इंसान का ज़रूर होता है जो हल्के से स्माइलिंग वे में आपकी बातों पे सिर हिला रहा होता है। उस इंसान को चूज़ कर लीजिए अपनी ऑडियंस में और वो आपके बहुत काम आएगा। आप ऐसा सोचें कि आप सिर्फ उस इंसान को एड्रेस करके बात कर रहे हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, और जब आपका वक्त आए इट्स लाइक द लॉ ऑफ कर्मा। सो जब आपका वक्त आए ऑडियंस में बैठने का और किसी का वक्त आए स्टेज पर जाके बोलने का, तो प्लीज़ आप उस इंसान के लिए एक अच्छे ऑडियंस बनिए और आप थोड़ा सा अटेंटिव रह के नॉट कीजिएगा तो वो भी अपने मन में आपको बहुत सारी दुआएं देगा। देन अनदर थिंग इज दैट हम लोग जब डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग से तो हम टिपिकली अपने दिमाग में ना नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार क्या हुआ अगर मैं अपनी लाइंस भूल गई तो, क्या होगा अगर मैं बिल्कुल ही अटक गई और समझ में नहीं आया, लोग हंसने लगेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। दिस इज़ अ नेगेटिव चेन ऑफ थॉट्स। आई थिंक आपको करना ये चाहिए कि आपको अपने आप से पॉजिटिव बातें कहनी चाहिए कि मज़ा आ जाएगा लोगों को मेरी बात सुन के, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा तो जो मेरी बात को सुन के इग्नोर कर देंगे, पर इसके बियॉन्ड कुछ और नहीं होगा। थिंक पॉजिटिव एंड आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, टेक पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम द ऑडियंस रादर देन टेकिंग नेगेटिव वाइब्स। बिकॉज ये बात याद रखिए कि आप स्टेज पे खड़े हैं, आपके हाथ में माइक है, वो लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब द पावर बैलेंस इज सच कि आप में कुछ ऐसा होगा ना कि वो लोग स्टेज पे नहीं खड़े हैं, आप खड़े हैं, आप ऑडियंस में नहीं बैठे, वो लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब उनको आपसे कुछ सीखने होगा। तो इसलिए उस पावर बैलेंस का जो वो बैलेंस ऑलरेडी आपकी फेवर में है, तो उस फेवर के चलते आपको पूरा हक है कि आप अपने बारे में पॉजिटिवली सोचें। One more thing that I want to say, this is particularly when it comes to doing corporate presentations. लोग क्या करते हैं कि ये सोच के कि कहीं मैं भूल जाऊँगा मुझे क्या बोलना है, अपना पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट या अपने सारे पॉइंट्स ना अपनी स्लाइड्स पे लिख लेते हैं, जिन्हें मतलब स्लाइड्स और PPT प्रेजेंटेशंस करनी होती है, वो पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख लेते हैं स्लाइड्स पे, और फिर वहाँ पे जाके उन सेंटेंसेस को प्रोजेक्टर की तरफ देखते हुए रीड करना, मतलब स्क्रीन की तरफ देखते हुए रीड करना शुरू हो जाते हैं, विच आई थिंक इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। बिकॉज देखिए वहाँ ना उस वक्त एक ही चीज़ की ज़रूरत है, या उस स्लाइड की ज़रूरत है या आपकी ज़रूरत है। अगर वहाँ स्लाइड पे भी पूरा सब कुछ लिखा रहा है और आप उसको एज इट इज़ पढ़ दे रहे हैं, तो एक तो ऑडियंस इरिटेट हो जाएगी, आप ऑडियंस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा फिर ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ वैल्यू ऐड नहीं है, आपने सिंपली गए और वहाँ पे जाके रीड कर दिया, उस बात का कभी पॉजिटिव फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप ऑडियंस की तरफ ना देखें और आप स्लाइड की तरफ देखें, तो फिर प्लीज स्लाइड पे पॉइंटर्स लिखें. डू नॉट राइट इंटायर लॉन्ग सेंटेंसेस ऑन द स्लाइड. एंड इफ यू आर राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस ऑन द स्लाइड, देन द बेस्ट वे टू डू इज टू गो अप देयर ऑन स्टेज एंड से दैट आई हैव आर्टिकुलेटेड माय थॉट्स. मुझे जो कहना था वो मैंने इस स्लाइड पे कहा है. नाउ आई विल गिव यू 2 मिनट्स. आप लोग ऑडियंस को कहिए कि आप लोग इस स्लाइड को पढ़िए, और उसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या उसमें कोई क्लैरिटी या कोई क्वेरी चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. दैट वे यू गेट अ ब्रीदर ऑल्सो फॉर 2 मिनट्स एंड द ऑडियंस गेट्स बिजी इन रीडिंग द स्लाइड्स. सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ. एंड द फाइनल थिंग इज दैट ऐसा ना कोई रेस नहीं है जब हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है कि जो जितना फास्ट बोलेगा, जो जितना फ्लुएंट बोलेगा, जो जितना बिना अटके बोलेगा वो ही अच्छा स्पीकर है, और जो बीच में पॉजेस लेगा, जो बीच में शायद पानी का एक घूंट पी लेगा, जो शायद बीच में रुक जाएगा और कुछ भी नहीं बोलेगा 30 सेकेंड्स के लिए, वो उतना सही स्पीकर नहीं है. ऐसा कुछ रिटन डाउन रूल्स नहीं है. इनफैक्ट मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग बहुत स्ट्रेटेजिक पॉजेज लेते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं. ये बहुत पुराने ज़माने की बात है कि अगर कोई बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा है तो हम सोचते हैं कि अरे कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, कितना फ्लुएंट इंसान है. वो फ्लुएंसी इज़ नो लॉन्गर दैट मच अ वर्च्यू. वॉट यू आर सेइंग एंड हाउ मच यू आर कनेक्टिंग टू द ऑडियंस इज़ द रियल वर्च्यू हियर. सो अगर आपको स्टेज पर आके कुछ बोलना है और आप बीच में रुक के सोच रहे हैं कि आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन. इनफैक्ट ऑडियंस आपसे ऐसे रिलेट करेगी कि उन्हें आप उनके जैसे लगेंगे. तो उसके बाद की जो इंटरेक्शन होगी ना, वो आपकी बहुत नेचुरल होगी, बहुत आसान होगी. सो प्लीज़ गो अहेड एंड टेक ऑल द पॉजेस दैट यू वांट टू टेक. डोंट बी इन अ रश टू डिलीवर अ स्पीच लाइक जल्दी से मैं निकाल दूँ इसको अपने सिस्टम से. वो वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टेज पे जाने का मौका कितने ही लोगों को मिलता है यार. अगर आपको मिल रहा है या आपको कुछ ऑनलाइन चीज़ एड्रेस करने का मौका मिल रहा है, तो इसको इन्जॉय करो ना. जितनी देर आपके पास माइक है आप उसको इन्जॉय करो. जब एक बार आदत पड़ जाती है ना, तो लोग माइक छोड़ते ही नहीं है. तो इसलिए आपको डर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. आपको खूब से अपना पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस इन्जॉय करना चाहिए. So this is all that I had to say with regards to the tension or tips on public speaking. अगर आपको इसमें से कोई भी टिप पसंद आई, नहीं भी पसंद आई, तो आप प्लीज़ मुझे लिखें. आई एम रादर एक्टिव ऑन ट्विटर एंड माई हैंडल इज़ @SonalKalra. आप मुझे ट्विटर पर लिख सकते हैं. आप मुझे sonal.kalra@hindustantimes.com पर मेल भेज के अपने थाट्स शेयर कर सकते हैं. लाइफ बहुत छोटी सी है, इसको हमको खुल के हैप्पीली बिना किसी डर के जीना है. टेंशन लेने का नहीं है और टेंशन किसी को देने का तो बिल्कुल ही नहीं है. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, टेंशन नॉट.
दिस पॉडकास्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय टाटा टी प्रीमियम, दिल्ली के लिए रिच टेस्ट.
You were listening to Health Shots, brought to you by HT Smartcast.
HT Smartcast.